दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आज मुझे दुल्हन की तरह सजाकर जलालुद्दीन के पास पेश किया गया था और हम एक दूसरे की बाहों में थे। जलालुद्दीन मेरे मम्मू को निचोड़ते हुए मेरे निप्पल को चूस रहे थे और अपने पान का थूक उन पर लगा रहे थे, जिससे वो पूरे लाल हो रहे थे। मुझे मज़ा आ रहा था, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। अब जलालुद्दीन ने मेरे पैरों को चाटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मेरी कमर को चाटने लगे और मेरे पूरे जिस्म को ऐसे ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से दबाने लगे, जिससे मुझे हल्का मज़ा भी आ रहा था और हल्का दर्द भी हो रहा था। अब वो मेरी जांघों को चाटते हुए मेरी जूत पर पहुंच गए और मेरे काले रंग की सेक्सी अंडरवियर, जो गीली हो चुकी थी, उसको चाटने लगे और उसको सूंघने लगे। मैं पूरा रस टपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरी पैंटी ही टपकने लगेगी। अब उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से मेरी जूत को चाटना शुरू कर दिया। आज तो उनका लंड सांप नहीं, पूरा अजगर बन चुका था। मैंने हैरान होकर पूछा, मेरे सरताज, ये क्या हुआ? जलालुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, दो गोलियां खाई हैं, आज तुमको दर्द देना है ना? मैं शर्मा गई। अब उन्होंने अपना फनफनाता हुआ लंड निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया और मैं उसके टपकते हुए रस को पीने लगी। अब जलालुद्दीन सिस्कारियां लेकर मेरा सर अपने लंड पर दबाने लगे और कोशिश करने लगे कि उनका लंड मेरे गले तक पूरा धस जाए। थोड़ी देर में जलालुद्दीन साहब बिस्तर पर लेट गए और मुझसे अपने ऊपर आने को बोला। मैं उनकी छाती पर बैठ गई तो बोले, छाती पर नहीं मेरी जान नगमा, लोड़े पे बैठना है। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथों से मुझे ऊपर किया और अपने तने हुए लंड पर बैठा लिया। मैं जलालुद्दीन साहब से 20-25 बार चुदवा चुकी थी, लेकिन आज उनका लंड एकदम गरम लोहे के डंडे जैसा लग रहा था। खैर, मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा था। अब मैं उनके लंड के ऊपर बैठकर उछलने लगी। मैं ऊपर उठती तो सर से उनका लंड बाहर निकलता और बैठती हो तो फिर धचाक से अंदर जाता। अब ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। मैं आगे पीछे होकर पूरा उनके लंड का मज़ा ले रही थी। मेरे उछलने पर मेरे मम्मी भी उछलते थे, तो जलालुद्दीन साहब ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें चूसने लगे। मैं थोड़ा सा लेट गई और फिर उठ गई। मैं बिस्तर के कोने में अब घोड़ी बन चुकी थी। जलालुद्दीन साहब मेरे पीछे आए और पीछे आकर उन्होंने अपना लंड मेरी चूत में पेल दिया और इतना ज़ोर से उन्होंने लंड पेला कि मेरी आह निकल गई। अब जलालुद्दीन ने अपना पूरा लंड बाहर निकाला और फिर ज़ोर से धक्का देकर अंदर कर दिया। उनके हर धक्के के साथ मेरा बदन हिल जाता और मम्मी तो इतना तेज हिलते मानो निकल कर गिर ही जाएंगे। काफ़ी देर तक जलालुद्दीन साहब मुझे पीछे से चोटते रहे और मुझे हल्का हल्का दर्द होता रहा, लेकिन पहली चुदाई वाले दर्द के आगे तो ये कुछ भी नहीं था। अब जलालुद्दीन साहब ने अपना लंड बाहर निकाला तो फिर अंदर नहीं डाला। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जलालुद्दीन साहब पास में रखी तेल की शीशी उठा रहे थे। उनका लंड तो मेरी चूत के पानी से पहले चिकना था, तो मैंने कहा, ये आप तेल क्यों लगा रहे हैं? और उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ हल्का सा मुस्कुराए और एक उंगली मेरी गांड के अंदर लगाकर तेल पहुंचाने लगे। कुछ देर तक एक उंगली से गांड की दीवारें चिकनी करते रहे और फिर उन्होंने धीरे से दो उंगलियां मेरी गांड में डाल दी। धीरे धीरे जगह बनाते हुए दोनों उंगलियों को मेरी गांड में अंदर बाहर करने लगे और फिर बोले, नगमा मेरी जान, अब मैं तुम्हारी गांड में उंगली घुसाऊंगा, शोर मत मचाना। मैंने आज तक बस मुंह और चूत से ही चुदवाया था, इसलिए गांड में लंड घुसाने की बात सुनकर मेरी गांड ही फट गई। मुझे लगा कि आज तो मेरी जान निकल जाएगी। उन्होंने ऐसे ही धीरे से अपना लंड मेरी गांड में घुसाना शुरू कर दिया और मेरी गांड को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगे। लेकिन मेरी गांड का छेद इतना टाइट था कि इतना मोटा लोड़ा घुसने को तैयार ही नहीं था। अब जलालुद्दीन ने पीछे से एक हाथ मेरे मुंह पर रखा और एक हाथ मेरी कमर में डाला। फिर उन्होंने पूरी ताकत से धक्का दिया तो मेरी गांड में उनका लंड घुस गया और मेरी तो मानो चीख निकल गई। लेकिन किसी ने नहीं सुने क्योंकि जलालुद्दीन साहब ने पहले ही मेरा मुंह दबा दिया था। अब धीरे धीरे मेरी गांड में अपना लंड वो गोल गोल घुमाने लगे। मुझे भयानक दर्द हो रहा था लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। कुछ देर जलालुद्दीन साहब ने जोर का धक्का दिया और इसी के साथ उनका लंड मेरे शरीर में घुस गया। मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं दर्द के मारे चीखना चाहती थी और किसी भी तरह उनके लंड को मेरी गांड से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। जलालुद्दीन बड़ी बेरहमी से मेरी गांड मार रहे थे और धीरे धीरे मेरे सारे बदन के पुर्जे हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हर धक्के के साथ मेरी गांड में करंट दौड़ रहा है। मेरी आंखें दर्द के मारे लाल हो चुकी थी, मेरी टांगें सन्न रह गई थी। आलम साहब ने मेरी गांड पूरी ज़ोर ज़ोर से फाड़ डाली थी और मेरी गांड से खून बहते हुए बिस्तर पर इकट्ठा हो रहा था। जलालुद्दीन साहब ने पीछे से मेरे बाल पकड़े और बोले, यही दर्द चाहिए था ना तुझको छिनाल, आज तेरी गांड का वो हाल करूँगा कि अगले 5 महीनों तक हगना भूल जाएगी। मैं दर्द के मारे मरी जा रही थी लेकिन जलालुद्दीन साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जलालुद्दीन साहब काफ़ी देर तक मुझे पेलते रहे और गोली के कारण उनका सामान अभी तक निकला नहीं था, एकदम पहले की तरह तना हुआ था। मैं घबरा गई कि जब तक इनका सामान नहीं निकलेगा इनका ये फनफनाता हुआ लंड मेरी गांड को ऐसे ही पेलता रहेगा। जलालुद्दीन साहब धक्के मारते हुए बोले, ये सब तो अंग्रेज़ों का दवाओं का कमाल है, इसी कारण तो आज तेरी गांड के चिथड़े हो गए हैं। जब जलालुद्दीन 10 मिनट तक मेरी गांड को चोटते रहे तो मुझे दर्द थोड़ा कम होता चला गया। अब मेरी गांड चौड़ी हो चुकी थी और उनका लंड काफ़ी आराम से बाहर अंदर हो पा रहा था। अब धीरे धीरे ये दर्द कम होने लगा, अब मुझे थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आने लगा। मैंने कहा, मेरे सरताज, और ज़ोर से चोदिए, मुझे अपनी रखेल को इतना ज़ोर से चोदिए कि मैं आज तक की सारी चुदाई भूल जाऊं। यह कहकर उन्होंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। जलालुद्दीन साहब अपने मूसल जैसे लंड को मेरी गांड में पेलते पेलते थक चुके थे और बुरी तरह पसीना पसीना हो चुके थे। उनके चेहरे से बहता हुआ गर्मा गर्म पसीना मेरी पीठ पर टपकता तो मेरा मन करता कि इस मेहनत के पसीने को चाट लूं। काफ़ी देर तक मेरी गांड की ठुकाई होने के बाद बुरी तरह जलन होने लगी थी। अब मैं जलालुद्दीन साहब से मिन्नतें करने लगी कि लंड गांड से निकालें, चाहे मुँह में घुसा दें या चूत में। मैंने कहा, सरताज, आज आपका लंड पानी क्यों नहीं छोड़ रहा, 1 घंटा चोते चोते हो गया। आलिम साहब बोले, जाने मन, आज तो तुम भी पानी नहीं छोड़ रही हो। मैंने कहा, सब आपका ही किया धरा है, एक मासूम लड़की को चोद चोद कर चुदक्कर रांड बना दिया आपने। अब धीरे धीरे जलालुद्दीन साहब भी ढीले पड़ने लगे थे और उनका भी पानी निकलने लगा था। मैं बोली, जान, पानी जब निकालना हो तब निकालना, लेकिन मेरी चूत में, उससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। जलालुद्दीन साहब ने कहा कि हाँ, बिस्तर पर सीधी लेट जाओ। अब वो मेरे ऊपर आ चुके थे, बहुत देर से मेरी चुदाई चल रही थी, फिर भी ना ही तो मेरा और ना जलालुद्दीन का पानी छूट रहा था। मैं सीधी लेटी, मेरे ऊपर आई तो हमें थोड़ा सा चैन मिला, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से जो लड़की किसी रंडी की तरह भकाभक गांड मरवा रही थी, उससे चूत में लंड लेने से अब क्या फ़र्क पड़ता। तो मैं चुपचाप लेटी रही। लगभग आधे घंटे तक उन्होंने मेरी चूत चोदी तो मेरा पानी छूटने की घड़ी आई और अचानक मेरे बदन में लहरें उठने लगी और मेरा पानी छूट गया। मैंने उनकी पीठ में अपने नाखून गड़ा लिए, पर उनका लोड़ा धनधनाता हुआ अभी भी मेरी चूत को पेले जा रहा था। तभी मुझे 1000 वाट का झटका लगा और मेरा बदन झटके खाने लगा। इसी के साथ फचाक फचाक की आवाज़ से मेरी चूत ने पानी छोड़ दिया। उन्होंने मुझे चोदना बंद किया और मेरी चूत के पास आकर मेरी चूत का पानी पी लिया। अब उनकी बारी थी पानी छोड़ने की। उन्होंने मुझे अपने सामने घुटनों पर बिठाया, मैं उनके आगे बैठ गई तो उन्होंने अपना लंड मेरे मुंह में घुसाया और ज़ोर ज़ोर से चोदने लगे। मेरे जबड़े हिलने लगे, मेरी आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थी, लेकिन अब मैं चाहती थी कि जल्दी ही जलालुद्दीन साहब का पानी निकले ताकि हम दोनों चैन की सांस ले सकें। जलालुद्दीन कुछ देर बाद बोले, मेरा पानी निकलने वाला है जान, चूत में लोगी या मुंह में? मैंने कहा, अब तो मुंह ही भर दीजिए अपनी रखेल का इस अमृत से। जलालुद्दीन बोले, हाँ मेरी जान, आज तो इतना पानी निकालूंगा कि तेरे पेट में जगह कम पड़ जाएगी। इसी तरीके से गरम गरम पिचकारियाँ मेरे गले तक लगने लगी और मैं उनका सारा रस चूस गई। मेरे सरताज का कीमती वीर्य बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे सारा का सारा निगल लिया। इस बार वो इतना अधिक था कि ना चाहते हुए भी वो मेरे मुंह से बाहर निकल रहा था, जिसे मैं चाट चाट कर अपनी जीभ से अंदर कर लेना चाहती थी। धीरे धीरे मेरे मुंह पर फैल कर उनका पूरा सामान मेरे मम्मों पर भी लग गया था और मैं अपने हाथों से कभी अपनी जीभ से उसको चाट चाट कर अंदर भर लेना चाहती थी। सारा सामान पीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जलालुद्दीन ने मेरी गांड मार मार कर मेरी गांड का बुरा हाल कर दिया था। मेरी गांड बुरी तरह फटी हुई थी और उसमें से ढेर सारा खून निकलकर बिस्तर पर फैला हुआ था। जब मैं हवस की आग में जल रही थी तब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो दर्द के मारे मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। दर्द के मारे में जलालुद्दीन साहब से लिपट गई और वो बोले, क्या पहली बार जैसा दर्द हो रहा है? मैंने कहा, हाँ, हॉट गांड की वैसी ही दर्दनाक चुदाई कर डाली आपने, पहली बार का दर्द याद दिला ही दिया। फिर जलालुद्दीन साहब ने कहा, इसका मतलब मैं शर्त जीत गया ना, अब तुम्हें 1 महीने तक अपने घर जाना होगा। मैं बता नहीं सकती थी कि आंसू आज की भयानक गांड चुदाई के कारण निकले हैं या अपनी मोहब्बत के दूर जाने के गम में निकले हैं, लेकिन दोस्तों, आज मुझे जन्नत की एक अलग सैर मिली। एक दुल्हन की तरह सजी धजी मैं पूरी तरीके से जलालुद्दीन से चुदी। सुबह एक हिजड़े ने आकर मुझे उठाया, देखा कि जलालुद्दीन कमरे में नहीं है। हिजड़े ने मेरी हालत देखी तो उसको दया आ गई, उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझे बिस्तर पर बिठाया और मेरी सफाई करने लगी। मेरे बदन पर अभी भी मोहब्बत की निशानी फैली हुई थी। हिजड़े ने गर्म पानी से मेरा बदन पोंछा, मेरी जांघों पर जम गया खून साफ किया और मेरी गांठ पर दवाई लगाई। उसने मेरा बिस्तर साफ करके हमारे कल रात के मसले हुए फूल एक कोने में फेंक दिए और मुझे साफ सुथरे कपड़े पहुंचाए। अगले 3-4 दिन में मेरे घाव काफ़ी भर गए, लेकिन चलने में फिर भी पैर दुखते थे। इन 4 दिनों में जलालुद्दीन मेरे पास कभी नहीं आए। मैंने भी इसको अपनी किस्मत मानकर मंजूर कर लिया। फिर 1 महीना पूरा हुआ तो मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेने आए। उस दिन मानो हज़ार सालों के बाद मुझे जलालुद्दीन की सूरत मुझे देखने को मिली। उनके और मेरे अब्बू के बीच कुछ बातें हुई। मैंने देखा कि मेरी अम्मी ने जलालुद्दीन के पैर पकड़ लिए और मेरे अब्बू ने उनका हाथ चूम लिया। मुझे लगा कि जलालुद्दीन आखिरी बार अपने नगमा जान से मिलने आएंगे, लेकिन वो तो बहुत बेरुखी से वापस लौट गए। मैं रोने लगी। फिर मेरे अम्मी अब्बू मेरे कमरे में आए तो मैं अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगी। मेरे वालिद सोच रहे थे कि मैं उनसे इतने दिनों बाद मिली हूँ इसलिए रो रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि जलालुद्दीन से अलग होने का जो दर्द है वो मेरी आँखों में झलक रहा है। ये मेरी ज़िंदगी का वो एक महीना था जिसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया था।